ग्रंथ है श्रीमद भागवतम छठा स्कंद अध्याय संख्या 9। आज ये अध्याय आज प्रारंभ हो रहा है। अध्याय का नाम है मृतासुर का आविर्भाव। श्लोक संख्या 1।
श्री शुक उवाच तस्यासन विश्वरूपस्य श्रांसि त्रिणि भारत सोमपित्थं सुरापीथम् सोमपित्थं सुरापीथम् अनादम् इति सुश्रम। श्री शुक उवाच तस्यासन विश्वरूपस्य श्रांसि त्रिणि भारत सोमपित्थ सुरापीथम् अनादिमिति सुश्रमम्।
धन्यवाद। अनुवाद तात्पर्य ऐसी भक्ति प्रदान स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद की।
श्री शुक उवाच श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा तस्य उसका आसन थे विश्वरूपस्य देवताओं के पुरोहित विश्वरूप को शिरांसि शिर त्रिणी तीन भारत हे महाराज परीक्षित सोमपित्थम सोमपान के लिए सुरापित्थम मदिरापान के लिए अन्नदम खाने के लिए इति इस प्रकार सुषुमा परंपरा से मैंने सुन रखा है। अनुवाद श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा देवताओं के पुरोहित विश्व रूप के तीन सिर थे। इनमें से एक से वह सोमपान करता था तो दूसरे से मदिरापान और तीसरे से भोजन ग्रहण करता था। हे राजा परीक्षित ऐसा मैंने विद्वानों से सुना है। तात्पर्य कोई मनुष्य स्वर्ग का राज्य इसके राजा व अन्य वासियों को प्रत्यक्ष नहीं देख सकता है और ना उनके अन्य कार्यकलापों को ही देख सकता है क्योंकि वह स्वर्गलोक नहीं जा सकता। यद्यपि आधुनिक वैज्ञानिकों ने अनेक अंतरिक्षयानों का आविष्कार कर लिया है किंतु वे अभी चंद्रमा तक नहीं पहुंच पाए। स्वर्ग की बात तो कोसों दूर है। कोई मनुष्य प्रत्यक्ष अनुभव से मानव अनुभूति से अधिक नहीं सीख सकता, उसे विद्वानों से सुनना चाहिए। इसलिए महात्मा सुखदेव गोस्वामी कहते हैं हे राजन मैं तुमको वही सुना रहा हूं जो कुछ मैंने विद्वानों से सुना है। यही वास्तविक वैदिक पद्धति है। वैदिक ज्ञान को श्रुति कहा जाता है क्योंकि यह विद्वानों से सुनकर ग्रहण किया जाता है। यह हमारे झूठे प्रयोगात्मक ज्ञान के दायरे से परे है।
हरे कृष्ण। तो आज से श्रीमद् भागवतम के छठे स्कंद का ये नया अध्याय प्रारंभ हो रहा है और इस अध्याय का बहुत ही रोचक नाम है मृतासुर का आविर्भाव। श्रीमद् भागवतम अमल पुराण है और श्रीमद् भागवतम में भगवान और भक्तों की चर्चा है और यह है मृतासुर, एक असुर का आविर्भाव। इसका मतलब बहुत ही विशेष असुर है और इनका आविर्भाव और आगे तीन चार अध्यायों में इनकी चर्चा चलती है और बहुत ही सुंदर प्रसंग है। बहुत अच्छी अच्छी शिक्षाएं हमें मिलेंगी कि इनकी कैसे बाद में मृत्यु होती है, इंद्र के साथ कैसे युद्ध करते हैं और क्या हमें शिक्षाएं देते हैं। तो आज से मृतासुर का आविर्भाव प्रारंभ होता है। तो आज में से कुछ लोग जो पहले कथा में आ रहे होंगे वो जानते हैं कि इससे पिछले अध्याय का नाम था नारायण कवच। नारायण कवच किसने किसको दिया था और क्यों दिया था? हाँ, नारायण कवच विश्वरूप जी ने इंद्र को दिया था। तो विश्वरूप जी अपने पैतृक पिता के अगर देखें पुष्टों के हिसाब से देवताओं से संबंधित थे और माता के संबंधों के हिसाब से असुरों से संबंधित थे और इंद्र जी से अपने गुरु बृहस्पति के प्रति अपराध हो जाता है और इसके कारण वह सभी ऐश्वर्यों से रहित हो जाते हैं। श्री श्री राधा राधिका रमन जी की, श्री श्री कृष्ण बलराम की, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की, श्री श्री गौ निताय की, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की। तो जो बृहस्पति इंद्र से रुष्ट होकर उनकी सभा से चले जाते हैं तो सभी देवता फिर असुरों से हार जाते हैं। तो फिर इंद्र विश्वरूप की शरण ग्रहण करते हैं, विश्वरूप एक यज्ञ करते हैं। उस यज्ञ के उपरांत वो नारायण कवच कुछ मंत्र इंद्र को देते हैं और उसके उच्चारण से इंद्र दोबारा से असुरों के ऊपर विजय प्राप्त कर लेते हैं। इसके बाद जो यज्ञ चल रहा होता है, विश्वरूप यज्ञ कर रहे होते हैं, तो क्या करते हैं विश्वरूप, थोड़ा सा धोखा करते हैं कि जो यज्ञ का प्रसाद है वो देवताओं को भी समर्पित करते हैं और छिप कर वो प्रसाद कुछ असुरों को भी देते हैं। तो चीटिंग प्रोपेंसिटी स्वर्ग के लोगों में भी है। तो जब ये इंद्र को मालूम चलता है तो इंद्र उनके सर काट देते हैं और फिर विश्वरूप के वितत्वष्टा वो इंद्र को वध करने के लिए एक यज्ञ करते हैं। तो यज्ञ बहुत तैयारी, अच्छी तैयारी करते हैं, लेकिन कुछ मंत्रों का थोड़ा सा गलत उच्चारण हो जाता है तो वृत्तासुर की उत्पत्ति होती है। वृत्तासुर दिखने में बहुत भयंकर राक्षस है लेकिन वास्तव में भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं। वो कौन है वास्तव में? राजा चित्रकेतु, जो कि आगे जाके और कथा आएगी। तो इसके बाद वृत्तासुर कैसे इंद्र से युद्ध करते हैं ये आगे के अध्याय में है। तो आज के श्लोक में जो अध्याय प्रारंभ हो रहा है तो सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बता रहे हैं, तस्यासन विश्व रूप से शिरांसी त्रीणि भारत। हे भारत परीक्षित महाराज, तस्यासन उसके थे विश्व रूप से, किसके विश्व रूप के, क्या तीन सिर थे। बड़ी अजीब सी बात है, तीन सिर थे। और तीन सिर से वो क्या करते थे? एक से तो सोमपान करते थे, दूसरे से मदिरा पान करते थे और तीसरे से अन्न खाते थे। ये फैसिलिटी चाहिए आप लोगों का? कोई फीस्ट होगा तो एक से हलवा खाएंगे, एक से पूड़ी खाएंगे, एक से फ्रूट क्रीम खाएंगे, खाते जाएंगे। अभी हमें लिमिटेशन होती है ना, फ्रूट क्रीम पड़ी, पहले सब्जी खा लूं उसके बाद फ्रूट क्रीम खाऊंगा, तब तीनों कंटिन्यूस साइमल्टेनियसली चलता जाएगा। तो एक से सोमपान, एक से मदिरा पान, एक से अन्न। तो कैसे विचित्र बात है। तो कह सकता है ठीक है, अच्छा, अच्छी कल्पना है ना, ये कल्पना की बात लगती है ना, अच्छी कल्पना है। तो परीक्षित महाराज को कॉशियस कर रहे हैं, मैं कल्पना की बात नहीं कर रहा हूं, आपकी मृत्यु आने वाली, मैं ऐसे आपसे जोक थोड़ी करूंगा। तो आपको सीरियस बात हो रही है। तो ऐसा मैंने सुना है, और किससे सुना है? विद्वानों से सुना है। शुरू में मैं ऐसी बात नहीं कर रहा आपसे, वास्तव में इनके तीन सिर थे और ऐसे ऐसे करते थे और मैंने ऐसा विद्वानों से सुना है, इसलिए आपको बता रहा हूं। तो श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में बहुत सुंदर तरीके से बता रहे हैं, कोई मनुष्य स्वर्ग का राज्य, उसके राजा और अन्य वासियों को प्रत्यक्ष नहीं देख सकता और उनके कार्यकलापों को भी नहीं देख सकता, क्योंकि वो सरलोक जा नहीं सकता। ये अलग बात है, किसी का ध्यान होता है, लोग बोलते हैं स्वर्गवासी, लेकिन स्वर्ग जाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। क्या बताया गया स्वर्ग जाने के लिए भगवदगीता में? कब व्यक्ति स्वर्गलोक में जा सकता है? जब वो सतोगुण में शरीर छोड़े। वो सतोगुण तो बहुत दूर की बात है, पूरा का पूरा समाज आजकल तमोगुण रजोगुण में घिरा पड़ा है, लेकिन फिर भी लोग उसका उसको शुभकामनाएं चाहते हुए जब भी किसी अपने सगे संबंधी का देहांत होता है तो बोलते हैं स्वर्गवासी। तो स्वर्ग में जाना इतना आसान नहीं है, और स्वर्ग लोक में क्या क्या सुविधाएं हैं उसको हम जान भी नहीं सकते। उस स्वर्ग के निवासी कैसे होते हैं? स्वर्ग के राजा को इंद्र बताया जाता है, और बताया जाता है स्वर्ग में बहुत सुविधाएं हैं। स्वर्ग में हर स्वर्गवासी के पास अपना एक एरोप्लेन है, विमान है, उस विमान को लेने के लिए कोई लोन वोन नहीं लेना पड़ता, कोई इंस्टॉलमेंट नहीं भरनी पड़ते, और बहुत सुंदर सुंदर बड़े बड़े विमान है। और स्वर्गलोक में भोग की बहुत सुविधाएं हैं, अच्छे अच्छे सोमरस हैं, मदिरा हैं, सुंदर सुंदर अप्सराएं हैं। और सबसे अच्छी बात है कि आप लोग जानकर खुशी होगी, स्वर्गलोक में कोई जो कुछ भी हम खाते हैं वो सीधा खून बन जाता है, मलमूत्र त्यागने की आवश्यकता ही नहीं है। देखिए कितनी खुशी की बात। कोई समस्या नहीं है आजकल। देखिए दिल्ली में सब लोगों को क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, वहां कोई ऐसी प्रॉब्लम, जो आप खाएंगे सब खून बन जाएगा और सब रिष्ट पुष्ट और बहुत लंबी आयु है। तो ऐसा सुन के सब कहते हैं चलो चलते हैं स्वर्गलोक में, लेकिन वहां पे भी जाना इतना आसान नहीं है। एक बार हिज होलीनेस गौर गोविंद साईं महाराज की एक शिष्या थी, उन्होंने शरीर छोड़ा, तो शिष्य लोग उनके पास आए, वो बोले महाराज बहुत अच्छी भक्ति, बहुत सेवा करती थी, इस समय कहां पे है? तो हिज होलीनेस गौर गोविंद साईं महाराज ने थोड़ा सा मेडिटेशन की और बताया, अभी वो स्वर्गलोक में गाय है। हम सोचते हैं हम भी स्वर्ग में जाएंगे, हम भी देवता बनेंगे, अप्सराओं के साथ नृत्य करेंगे, सोमपान करेंगे, ऐसा नहीं है। हो सकता है स्वर्ग में जाके हम पशु भी बन जाएं, है ना। तो जैसे वो उनकी शिष्या गाय बन गई,
हो सकता है उसकी गाय की क्वालिटी निश्चित रूप से यहाँ की गाय से अच्छी होगी, है ना, वो अलग बात है, क्योंकि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, हाँ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग तो हाई होगा ही होगा, लेकिन हम कल्पना नहीं कर सकते स्वर्गलोक में कैसा जीवन होगा। और आधुनिक वैज्ञानिक क्या कह रहे हैं, वो सोच रहे कि हम पहुंच जाए, ऑलमोस्ट पहुंच गए बस, और हमारी रेंज में है, चंद्रमा पर हम जा ही चुके हैं, वो ऐसा सोचते हैं, हालांकि ऐसा हुआ नहीं है। आचार्य उदाहरण देते हैं कि एक कुकुर कुत्ता जब चंद्रमा को देखता है तो उसे क्या सोचते है, ये रहा सामने तो है, तो उसको देखकर गुस्सा आता है, मेरे एरिया में चंद्रमा कैसे आ गया तो देखकर उसको भोंकता है, भाग यहां से चल, उसको पसंद नहीं है, तो सोचते मेरी रेंज में। इसी ढंग से वैज्ञानिक सोचे मेरी रेंज में है चंद्रमा, बस अभी पहुंच गया है। तो मनुष्य पशु में क्या अंतर हुआ बताइए, वैज्ञानिक भी ये सोच रहा है कि मैं चंद्रमा तक पहुंचाऊंगा। अमेरिका में तो ये हुआ था कि वहां पे फ्लैट्स की बुकिंग शुरू हो गई थी कि वहां जाकर घर बनाएंगे, और एक कुकुर भी यही सोच रहा है कि चंद्रमा हमारी रेंज में है। तो मनुष्य पशु में क्या अंतर हुआ, जब मनुष्य को उच्चतम बुद्धि मिली है ये जानने के लिए कि ये विभाजन क्यों किया गया है, ये चेतना के आधार से किया गया है, और मनुष्य जीवन की बुद्धि हमें मिली है, इन सब से परे ये तो एक आकाश है, इस आकाश से परे एक और आकाश है। आधुनिक वैज्ञानिक इस आकाश को भी नहीं जान पाए, कभी बोलते हैं केवल 9 ग्रह होते, जब हमने पढ़ा था भूगोल, आजकल कितना बता रहे हैं कितने ग्रह हैं, 8 हो गए, ज्यादा हो गए मेरे ख्याल से, हाँ पता ही नहीं कितने ग्रह हैं, बताइए अभी तक। पहले बोलते थे कि एक ही ब्रह्मांड है, अब वो मानने लगे हैं कई ब्रह्मांड है, है ना। सृष्टि का कारण क्या है, पहले बोलते हैं बिग बैंग थ्योरी, फिर ब्लैक पॉइंट, ब्लैक होल, अब कुछ नैनो थ्योरी, कुछ ऐसे चल रहा है, अलग अलग उनकी थ्योरीज हैं, उनको पता ही नहीं सृष्टि के कारणकर्ता कौन है, कैसे सृष्टि हो रही है, सृष्टि में अलग लोक क्या है, अन्य लोकों में जीवन ही नहीं है, वो बोलते हैं अन्य लोकों में जीवन खाली पड़े हैं सब, ऐसे ही ऐसे सृष्टि गुरु खाली पड़े हैं, हम कहां पे जाएंगे, वहां पे घर बनाएंगे सब। तो जो आधुनिक विज्ञानी है बिल्कुल पूर्ण रूप से भ्रम में है, और सबसे दुख की बात यह है कि हमें उन पर पूरा विश्वास है, उनको नोबल पुरस्कार मिलता है, हम उनका गुणगान करते हैं, कितना चमत्कार कर दिया साइंटिस्ट ने आजकल, है ना, तो हम भी बड़े उनका गुणगान करते रहते हैं, और हर व्यक्ति अपने बच्चे को डॉक्टर इंजीनियर बनाना चाहते हैं, है ना। प्रभुपाद के पास, प्रभुपाद के किसी प्रोफेसर से बातचीत हो रही थी, डॉक्टर बेनफोर्ड से, तो वो लगते हैं हाँ बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप देखिए साइंस ने चमत्कार कितना किया है, आप कल्पना कीजिए जीवन की जहां पे डॉक्टर ही ना हो, डॉक्टर हैं हमें बीमारी होती है उनके पास चले जाते हैं, तो कल्पना प्रभु कहते हैं कल्पना किसी ऐसी जीवन की जहां बीमारी ही ना हो, बुद्धि लगाओ अपनी, है ना। आप सोच रहे डॉक्टर के बिना जीवन असंभव है, लेकिन हमको बता रहे हैं ऐसा जीवन है जहां बीमारी नहीं है, है ना। लोग बोलते हैं जान है जहान है, लेकिन एक ऐसी जहान है जहां केवल जान ही जान है, है ना। स्पिरिचुअल वर्ल्ड इज ऑल कॉन्शियसनेस, सब चेतन ही चेतन है, कुछ जड़ ही नहीं है वहां पे, और यहां पे इस जड़ जगत में आत्मा फंस गई है, और वो कैसे स्वस्थ रह सकती है, आत्मा हमेशा रुग्ण अवस्था में है। ये शरीर चाहे देवताओं का हो, चाहे कुत्ते बिल्ली का हो, या मच्छर का हो, इसका मतलब बहुत ही रुग्ण स्थिति है, हम बीमारी की अवस्था में है। तो इस बीमारी से, इसका मूल से इसका निदान करना है, ना कि आजकल साइंस ने बड़ी तरक्की कर ली है, बड़े नए नए इलाज आ गए हैं, कुछ भी पता चल जाता है, कहीं भी वायरस छिपा हुआ ढूंढ के निकाल देते हैं, और फिर उन बैक्टीरिया का अलग अलग नाम देते हैं, किसने नाम दिया, ये इकोलाई है, ये टी कोलाई है, इसके अंदर ये एंटीबायोटिक चलेगी, एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। आसपास हम देख रहे हैं कि सब मर रहे हैं, लेकिन एक्सपेरिमेंट करेंगे कि मैं नहीं मरूं। अगर आपको अमृतत्व प्राप्त करना है, इम्मॉर्टल होना है, तो उसकी एक विधि है जानने की, उस विधि को जाने, ना कि झूठे, प्रभुपाद कहते हैं झूठे प्रयोगात्मक फॉल्स एक्सपेरिमेंटल नॉलेज से कुछ भी प्राप्त नहीं होने वाला। तो जो ज्ञान है वास्तव में, जो सत्य है, इसके वास्तव में 5 भाग हैं। भगवद्गीता के 5 सब्जेक्ट्स क्या क्या हैं, 5 विषय क्या हैं, ईश्वर, जीव, प्रकृति, कर्म और काल। तो ये 5 सत्य के मुख्य भाग हैं, और इन 5 सत्य को जानना ही जाना है, हम परम सत्य को जान सकते हैं, और इन 5 सत्य को, मुख्य भाग को जानने के लिए कुछ प्रमाण चाहिए। सत्य साबित करने के लिए हम कोर्ट में भी जाते हैं, तो सत्य साबित करना होता है, कुछ प्रमाण दीजिए, कैसे आप कह सकते हैं ये बात सत्य है। इसलिए ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल, कर्म के बारे में आप कुछ कह रहे हैं, तो इसका प्रमाण क्या है। तो बलदेव विद्याभूषण भी बताते हैं कि मुख्यतः 3 प्रमाण है। कौन कौन से प्रमाण है, प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण और शब्द प्रमाण। तो ये सब हम जब कॉलेज में टीचिंग करते हैं, स्कूलों में प्रचार करते हैं, आप सब भी भक्ति विषय में सोचते हैं, प्रारंभ की अवस्थाओं में ये सब बताया जाता है, लेकिन ये बहुत गहरा ज्ञान है, इतना आसान नहीं है। हम सबको भी लगता होगा कि हम तो प्रत्यक्ष और अनुमान से बहुत ऊपर आ गए हैं, हम अभी केवल शब्द ब्रह्म में स्थित हैं, रोज प्रतिदिन भागवतम पढ़ते हैं सुनते हैं, तो हम तो शब्द ब्रह्म पे सारा कार्य करते हैं। नहीं, हम जानेंगे देखेंगे कि बहुत मुश्किल है। आप हमारी जो टेंडेंसी है, प्रवृत्ति है प्रत्यक्ष और अनुमान प्रमाण पर निर्भर करने की, बहुत गहरी टेंडेंसी है, और इसीलिए हम कृष्ण को अभी तक जान नहीं पाए हैं। तो प्रत्यक्ष प्रमाण क्या होता है? प्रत्यक्ष प्रति अक्ष, प्रति का अर्थ है समीप, नियर या उसके द्वारा, और अक्षर का क्या अर्थ हुआ? इंद्रियां, है ना, जो हमारे इंद्रियों को दिखाई दे, इंद्रियों को सुनाई दे, जिस इंद्रिय के द्वारा हम उसको स्पर्श कर सके, सूंघ सके, वो ठीक है, जो हमारे इंद्रियों से परे है वो नहीं है, है ना। तो ये प्रत्यक्ष ज्ञान है, तो क्या ये ठीक है? ये तो अलग सी चर्चा हो जाएगी, बहुत लंबा समय निकल जाएगा, लेकिन हम जानते हैं कि ऐसा नहीं है कि जो दिखाई देता है, जो सुनाई देता है वो सत्य है, और जो दिखाई नहीं देता, सुनाई नहीं देता, हमारी इंद्रियों से परे, वो सत्य नहीं। ऐसे बहुत से उदाहरण हम दे सकते हैं, लेकिन इस प्रत्यक्ष प्रमाण की मुख्य कमी क्या है कि प्रत्येक बद्ध जीव के अंदर चार मुख्य दोष है। कौन कौन से दोष है? सबसे पहले है भ्रम, वो कंफ्यूज रहता है। क्या कंफ्यूजन है? सबसे बड़ा कंफ्यूजन क्या है? मैं ये शरीर हूं, है ना, और इस शरीर को स्वस्थ करने के लिए, परफेक्ट बनाने के लिए पूरा जीवन निकल जाता है। क्यों? वास्तव में आत्मा हमेशा पूर्ण है और हेल्दी है, सुंदर है, और हम चाहते हैं कि मैं शरीर हूं हमेशा सुंदर दिखूं, बुरा भी हो जाऊं तो सुंदर दिखूं, है ना, और हमेशा स्वस्थ रहूं और हमेशा परफेक्ट रहूं। ये भ्रम है, क्योंकि मैं अपने आप को शरीर समझ रहा हूं, और इसी भ्रम के कारण हम किसी वस्तु को कुछ और समझ जाते हैं। प्रभु उदाहरण देते हैं, रस्सी को सांप समझ लेते हैं, सांप को रस्सी समझ लेते हैं, तो ये भ्रम। दूसरा है प्रमाद। प्रमाद का मतलब कि अटेंटिव ना होना, ध्यान नहीं देना। किसी भी समय पे हमारा मन और हमारी इंद्रियां एक ही वस्तु पे ध्यान नहीं दे सकती। अगर हम देख कुछ रहे हैं तो मन कहीं और होगा, तो इससे इनअटेंशन हो जाता है। बहुत कॉमन है अटेंशन डेफिशिएंसी सिंड्रोम, है ना, हम हमेशा कहीं और सोच रहे होते हैं, देख कहीं और रहते हैं, उससे क्या होता है? इनअटेंशन होता है, प्रमाद, और उससे क्या होता है? फिर गलती हो जाती है। गाड़ी चला रहे हैं आप, देख कहीं और रहे हैं, सोच कहीं और रहे हैं, धक से धक्कर हो जाएगी, गलती हो गई, क्योंकि हम फोकस नहीं रह पाते, तो एक गलती करना, हम सबसे टू आर इज ह्यूमन, गलती हम करते ही रहते हैं। उसके बाद क्या है? फिर विप्लिप्सा, गलती भी होती है, उसके बाद हम क्या करते हैं? धोखा देते हैं। धोखा देना हम सबकी प्रवृत्ति है। धोखा देना क्या है? कि हम अपनी गलती नहीं मानते और बार बार उसी गलती को करते हैं, हम सोचते हैं हम ठीक कर रहे हैं। बड़े बड़े साइंटिस्ट ने हमें देखा है, बहुत बड़े बड़े धोखे दिए हैं, है ना, आप जानते हैं ना, कई ऐसे वाले बोला जाता है कि ये मेडिसिन खाओ, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, बाद में मिलता है तो उस मेडिसिन ने आपको किडनी को खत्म कर दिया, बोले ओहो अब मालूम चला हमें, है ना, अब नई रिसर्च हुई है। तो इस ढंग से ये धोखा हम खाते आए हैं और धोखा देते आए हैं। सबसे बड़ा धोखा क्या है? कि हम अपना कोई घर खोलते हैं, घर लेते हैं, रजिस्ट्री अपने नाम करा लेते हैं, कराएंगे, कोई दुकान फैक्ट्री होगा, नीचे प्रोपराइटर लिख देंगे, भगवान कह रहे हैं सर्वलोक महेश्वरम, बोले वो होंगे, इस दुकान का मालिक मैं हूं। ये सबसे बड़ा दुख है कि हम सोचते हैं कि कृष्ण से छोड़कर हमारे पास अपनी कोई वस्तु है, मैं और मेरा मेरा, ये सबसे बड़ा दुख है, ये वस्तु मेरी है, धोखा। और उसके बाद फिर अंतिम क्या है? अपूर्ण इंद्रियां, हमारी इंद्रियां पूर्ण नहीं है, हमारी आंखों की कानों की कुछ लिमिटेड रेंज है, उसी के द्वारा हम कुछ देख सकते हैं, सुन सकते हैं। तो इन चार दोषों के साथ हम जो भी ज्ञान प्राप्त करेंगे वो अपूर्ण होगा, और इन चार दोषों के साथ हम देख सकते हैं, हम इस भौतिक जगत का भी ज्ञान पूरा प्राप्त नहीं कर सकते। श्रीराम स्वामी महाराज जी बता रहे थे कि साइंटिस्ट लोग इतना रिसर्च कर रहे हैं, फिर भी एक अणु तक को वो नहीं जान पाए, एक एटम को नहीं जान पाए। तो जो एटम के क्रिएटर है कृष्ण, उनको कैसे जान पाएंगे? एक एटम के लिए अलग अलग थ्योरी है, अभी तक वो निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा कि एटम है क्या, छोटी सी चीज, एक एटम, उसका पता नहीं चल पाया। तो पूरी सृष्टि के जो करता है, सृष्टि रचयिता, उनके बारे में, कृष्ण के बारे में कैसे जान पाएंगे? तो ये क्योंकि डिफेक्ट है इस प्रत्यक्ष प्रमाण का। और उसके बाद है अनुमान प्रमाण। अनुमान का मतलब ये अनुमान लगा रहे हैं, हमारी तर्क बुद्धि बहुत सीमित है, लिमिटेड इंटेलिजेंस है हमारा। हम सबको जानना चाहिए कि मनुष्य की बुद्धि बहुत ही नगण्य है, और हम सबको बहुत गर्व रहता है अपनी बुद्धि पर। इस बुद्धि के द्वारा हम देखते हैं हम कितनी गलतियां कर देते हैं। तो अनुमान प्रमाण से भी हम सत्य को स्थापित नहीं कर सकते, तो सत्य को केवल शब्द प्रमाण से हम स्थापित कर सकते हैं। और शब्द का अर्थ है शास्त्र, भगवान की वाणी, वेद, वेद भगवान के श्वास है, और ये सनातन है, ये अपौरुषीय है, ये पूर्ण है, इसमें कोई त्रुटि नहीं है। और केवल वेद के माध्यम से, शास्त्र के माध्यम से ही हम भगवान को जान सकते हैं। जैसे कोई शब्द एक आकाश का कंपन है, एक वाइब्रेशन है, जैसे बताते हैं भगवान गीता में, भूमि आपो अनल वायु खम, ये आकाश एक तत्व है, उसका जो कंपन होता है उससे शब्द निकलता है। और सृष्टि की जब शुरुआत हुई थी, इससे सबसे पहले जो तत्व आया था शब्द, शब्द से ही सृष्टि की रचना हुई है, और ये भौतिक शब्द ध्वनि से भौतिक सृष्टि की रचना होती है, और आध्यात्मिक शब्द ध्वनि से हम इस भौतिक जगत को पार कर सकते हैं। ओम शब्दात अनावृति वेदांत सूत्रों में बताया गया है। इसलिए शब्द बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। श्री प्रभुपाद बताते हैं ये शब्द हम कर्णों के द्वारा, शब्द हुआ तो इसलिए कर्ण इंद्रिय भी है, ये सारी की सारी वस्तुएं हमारे आंखों से मन से परे हैं, लेकिन भगवान ने ये सुविधा दी कान, इन कर्णों के द्वारा शब्द का श्रवण करके हम सत्य को जान सकते हैं। ये जो कर्ण है प्रभुपाद बताते हैं एक छोटा सा छिद्र है, इन छोटा सा छिद्र ये आकाश का खम का प्रतिनिधि है, और आकाश असीमित है, इसलिए इसमें असीमित ज्ञान हम प्राप्त कर सकते हैं, इसकी कोई सीमा नहीं है। इस छोटे से छिद्र के द्वारा हम असीमित कृष्ण को प्राप्त कर सकते हैं, ओरल रिसेप्शन, अजीब सी बात है। देखिए कृष्ण असीमित है, एक छोटा सा छिद्र है, इसके द्वारा हम भगवान को रिसीव कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। तो हम पे निर्भर करता है कि इस छिद्र में, कर्ण में हम क्या डाल रहे हैं, भौतिक शब्द ध्वनि डाल रहे हैं कि आध्यात्मिक शब्द ध्वनि। अक्सर हम लोग बहुत ही केयरलेस रहते हैं, कुछ भी चलता रहे आसपास सुनाई देता है, कोई ध्यान नहीं देता। खाना होता है तो बोलते हैं नहीं सड़क पे ढाबे से मत खाना, इन्फेक्शन हो जाएगा, नहीं सुनना तो कुछ भी डाल दे, गंदे गाने चल रहे हैं, गंदा आवाज चल रहे नहीं, उससे क्या होगा, चेतना दूषित हो जाएगी। तो हमें ध्यान देना चाहिए, ये कर्ण, ये इंद्रिय दी गई है भगवान के विषय में ज्ञान प्राप्त करने के लिए। तो इस शब्द को जानना बहुत महत्वपूर्ण है। जब हम भौतिक शब्द ध्वनि सुनेंगे तो हम सत्वगुण, रजगुण और तमोगुण में स्थित होंगे, और जब आध्यात्मिक शब्द ध्वनि सुनेंगे तो आध्यात्मिक जगत की, वैकुंठ की भी तीन गुण होते हैं। तीन मुख्य गुण कौन कौन से हैं? भौतिक जगत है तमो रज और सत्वगुण, आध्यात्मिक जगत सच्चित आनंद, सच्चित और आनंद। तो कुछ शब्द ध्वनि होंगी जो कि आध्यात्मिक जगत केवल सत तक हमें ले जाएंगी, कुछ शब्द ध्वनि से सत और चित्त को जान पाएंगे, और कुछ शब्द ध्वनि से हम सच्चित आनंद यानी पूर्ण भगवान को जान पाएंगे। तो इस शब्द ध्वनि के जो स्रोत होंगे वो स्वयं कृष्ण होंगे, जो सच्चित आनंद, क्योंकि इस शब्द ध्वनि उस शब्द ध्वनि के कर्ता से बिल्कुल अभिन्न है, प्रभुपाद बताते हैं। तो भगवद्गीता के पहले अध्याय में भगवान क्या कह रहे हैं, मई आसक्त मना पार्थ योगम युंजन मदाश्रय असंक्षयम समग्रम माम यथा ज्ञायसि तत्श्रिणु, श्रिणु सुनो अपने कान के द्वारा, यथा ज्ञायसि जिस अगर मुझसे जानना है तो भगवान बता रहे हैं इस श्लोक में, मुझे सुनकर क्या होगा, मई आसक्त, इसके पांच प्रभाव होंगे कि मेरा मन तुम्हारा मुझमें आसक्त हो जाएगा। मई आसक्त मना पार्थ योगम, तुम योग में स्थित हो जाओगे, योगम युंजन मदाश्रय, तुम्हारी चेतना पूर्ण से मुझ पर निर्भर हो जाएगी। मैं असक्त मना पाता योगम असंशयम, सारे के सारे आपके संशय समाप्त हो जाएंगे। असंशयम समग्रम माम यथा गया ऐसी, पूर्ण रूप से आप मुझे जान जाओगे अगर हम भगवान से सुनते हैं। तो ध्यानपूर्वक समझने का हम प्रयास करेंगे। तो अगर हम भगवान को देखना चाहते हैं, भगवान को जानना चाहते हैं, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें भगवान से सुनना पड़ेगा, भगवान की सुननी पड़ेगी। जब तक भगवान से सुनेंगे नहीं, भगवान को जान नहीं पाएंगे। और हम भगवान से सुनते क्यों नहीं है, क्योंकि हमारी इच्छा ही नहीं है सुनने की, क्योंकि हमारी इच्छा अशुद्ध है, दूषित है, इसलिए हम भगवान से सुनना नहीं चाहते। और जब भगवान से सुनना नहीं चाहते तो भगवान को जानेंगे कैसे। दुर्योधन के पास ही भगवान गए अपना संदेश लेकर, उसने भगवान की नहीं सुनी, भगवान ने उसको विश्व रूप दिखाया, उसको लगे तो माया है, जान ही नहीं पाया। जब श्री कृष्ण यहां पर थे धराधाम में, तो लगभग कोई 100 लोग थे आसपास, प्रभु बताते हैं, फ्यू हंड्रेड पीपल न्यू कृष्ण एज सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड। और उस समय आबादी कितनी थी, हमने बोला कि 64 करोड़ लोग तो कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में मारे गए। कितनी आबादी थी उस समय, उसमें से कुछ 100 लोग थे ऐसे जो कृष्ण को भगवान के रूप में जानते थे, क्योंकि वो भगवान की सुनते थे। इसलिए ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि हम भगवान को देख पाएंगे कि नहीं देख पाएंगे, पहले बात यह है कि हम भगवान की सुनना भी चाहते हैं कि नहीं। और हम भगवान की नहीं सुनना चाहते क्योंकि हमारी इच्छाएं शुद्ध नहीं है। जब तक हमारी इच्छा शुद्ध नहीं होगी हम भगवान को सुन नहीं सकते। जैसे कि हिरण्याक्ष का वध, हिरण्याक्ष वरह का वध करने के लिए जब वरुण देव ने उनको बताया कि जाओ गर्भोदक सागर में विष्णु तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं उसके साथ युद्ध करो, तो बोलने लगा कहां है वो, कहां है विष्णु जो हमारे मित्रों को मारकर छिप जाता है, नजर नहीं आता। वो सोचते हैं अगर विष्णु नजर आएंगे तो मैं उसको मार दूंगा। तो अगर हमें भगवान नजर आ भी गए तो हम क्या करेंगे, उनसे युद्ध करेंगे, उनको जानेंगे थोड़ी, क्योंकि जब तक मैं उनसे सुनूंगा नहीं उनकी मैं शरण ग्रहण नहीं, उनको जान नहीं पाऊंगा। तो ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है कि पहले भगवान को दिखाएं तब उनको मानेंगे, अगर दिख भी गए तब भी उनको मानेंगे नहीं। कोई भगवान आ गए हमारे पास ऐसे त्रिभंग रूप में, मोर पंख लगाया हुआ नीले रंग के, बोले कौन है ये कहां से, जो वस्त्र राधा राधिका रमन डालते हैं आप सड़क पर डाल के निकल सकते हैं उनको, जैसा श्रृंगार भगवान करते हैं ऐसा श्रृंगार हम करने की सोच भी सकते हैं, और ऐसे कैसे हमारे सामने आ गए, बोले कहां से आ गए भाई, क्या है, जान भी नहीं पाएंगे क्योंकि हमने सुना नहीं है। इसलिए भगवान से सुनना बहुत आवश्यक है, और सुनना के लिए हमारी इच्छाएं अशुद्ध हैं उनको शुद्ध करना पड़ेगा। और ये जो भगवान के विषय में ज्ञान प्राप्त होता है ये गुरु परंपरा से प्राप्त होता है। ये जो वैदिक ज्ञान है इसके मुख्यतः 3 भाग है, कौन कौन से, कर्मकांड, ज्ञान कांड और उपासना कांड। तो ब्रह्मा जी वो उन दुर्लभ जीवों में से पहले जीव हैं जिनके हृदय में भगवान ने ज्ञान खुद प्रकट किया। क्यों, ब्रह्मा जी की ऐसी क्या खासियत थी कि भगवान ने ज्ञान उनके हृदय में प्रकट किया, सक्यों? तपस्या तो बहुत लोगों ने की, हाँ ये इन पार्ट्स उत्तर मिल रहे हैं, हाँ, लेकिन मुख्य एक बात है कि भगवान ने ब्रह्मा जी के हृदय में ज्ञान कैसे प्रकट, क्यों प्रकट किया, क्योंकि ब्रह्मा जी भगवान को बहुत प्रिय हैं, भगवान को ब्रह्मा जी बहुत प्रिय हैं। भगवान ने ब्रह्मा जी से हाथ मिलाया था, हैंडशेक किया था, ब्रह्मा के दोस्त हैं, मित्र हैं, और बोला जाओ ऑल द बेस्ट क्रिएशन करो जाओ। क्यों, भगवान ब्रह्मा जी की ऐसी क्या योग्यता थी कि भगवान ने उनसे हाथ मिलाया। हम लोग भी जब स्टूडेंट्स होते हैं एग्जाम देने आते हैं अपना पेन रख देते हैं आगे, अपना एग्जामिनेशन लेटर वो लिख देते हैं भगवान, तो कभी राधिकरण जी हाथ मिलाया ओके ऑल द बेस्ट जाओ। क्यों, क्योंकि ब्रह्मा जी भगवान के बहुत प्रिय हैं। क्यों प्रिय हैं, श्री प्रभु बताते हैं कि ब्रह्मा जी के अंदर 3 योग्यताएं थी। ब्रह्मा जी को आवाज सुनाई देती तप तप, तो ब्रह्मा जी ने भगवान के शब्दों पर अपने गुरु के वाक्यों पर पूरा विश्वास किया, नंबर एक। नंबर दो, ब्रह्मा जी को उस तप की विधि पर पूरा विश्वास था। नंबर 3, ब्रह्मा जी ने बहुत ही कठिनाइयां सही लेकिन उस विधि को छोड़ा नहीं, यानी कि गुरु के शब्दों में विश्वास, गुरु के द्वारा दी गई विधि में विश्वास, और उस विधि को पालन करना पूरे कष्टों के साथ, परसीवरेंस प्रूफ ऑफ जाते हैं। इन 3 योग्यता के कारण ब्रह्मा जी अपने गुरु भगवान के बहुत प्रिय हो गए, और जब प्रिय हुए तो ब्रह्मा जी के हृदय में भगवान ने ज्ञान प्रकट किया। इसी ढंग से ब्रह्मा जी की बहुत ही संतानें थी। ब्रह्मा जी की बहुत ही संतानों में से सबसे प्रिय संतान उनको कौन सी थी, नारद मुनि। क्यों, क्योंकि कर्मकांड, ज्ञान कांड, उपासना कांड में से नारद जी को उपासना कांड दिया गया, क्योंकि नारद जी बहुत प्रिय थे। नारद जी की उत्पत्ति ब्रह्मा जी के दिव्य विचार विमर्श से उत्पन्न हुए। नारद जी, दक्ष प्रजापति ने कर्मकांड को स्वीकार कर लिया, 4 कुमारों ने ज्ञान कांड को, और नारद जी को दिया गया उपासना कांड, क्योंकि नारद जी ब्रह्मा जी के बहुत प्रिय थे। और इसी ढंग से गुरु परंपरा शुरू होती है। तो इससे हम समझ सकते हैं ये गुरु शिष्य परंपरा की जो कड़ी है वास्तव में हृदय की कड़ी है, इट्स लिंकिंग ऑफ हार्ट, हृदय से हृदय जुड़ता है, तब गुरु के द्वारा शिष्य के हृदय में दिव्य ज्ञान प्रकाशित होता है। ये शब्द ब्रह्म का ज्ञान शिष्य के हृदय में तब प्रकाशित होगा जब शिष्य वास्तव में गुरु के प्रिय होगा। भगवान गीता में अर्जुन क्या बोलते हैं कि भक्तोसि मे सखा चेति, तुम मेरे भक्त भी हो और सखा भी हो। एदम तूते गुहेतम प्रयोगशामी अनुसूयवे, मैं तुम्हें गुहेतम ज्ञान बता रहा हूं क्योंकि तुम द्वेष नहीं करते, मुझसे द्वेष नहीं करते। इसलिए जब तक कोई शिष्य गुरु का बहुत प्रिय नहीं बनेगा तो गुरु के द्वारा वो ज्ञान स्थानांतरित नहीं होगा। ये शब्द ब्रह्म का जो ज्ञान है ये कोई फॉर्मेलिटी का ज्ञान नहीं है। गुरु और शिष्य के बीच में संबंध फॉर्मेलिटी का नहीं है, औपचारिकता नहीं है। इसलिए प्रभुपाद बताते हैं कि डोंट बी एन ऑफिशियल मेडिटेटर, कि बस गुरु जी ने बताया 16 माला जप करनी कर दो, किसी ढंग से निपटा दो। गुरु और शिष्य का संबंध केवल आदर तक ही नहीं रहना चाहिए, वो गुरु जी आगे कांपना शुरू कर दिया आदर से, नहीं, गुरु और शिष्य का संबंध हृदय का संबंध होना चाहिए। तो आप बोल सकते हैं हमारा तो गुरु जी से हृदय का संबंध है ही नहीं, पता नहीं है भी नहीं है क्या है वो है, वैसे कंफ्यूजन में है। लेकिन जो वैष्णव हैं, जो गुरु हैं, वो हमारे हम लगता है कि हमारे जीवन में सबसे ज्यादा प्रेम करने वाली हमारी माँ है ना, माता पिता भाई बहन, लेकिन गुरु इन सबसे ऊपर है। क्योंकि गुरु कभी भी अपने शिष्य का बुरा नहीं देखते। हमें कई बार ऐसा लग सकता है जैसे एक छोटे से परिवार में पिताजी कहीं दूर शहर में चले जाते हैं पैसा कमाने के लिए और बेटा अपने माँ के साथ ही रहता है, लेकिन बेटे और माँ पूरे परिवार का जो देखभाल पिताजी कर रहे हैं दूर से, उसको धन भेजते हैं, सारी सुविधाएं भेजते हैं, नहीं बेटे को पता ही नहीं है, वो सोचते हैं जो कुछ कर रही है मेरी माँ ही कर रही है, नहीं वास्तव में करने वाले कौन है, उनके पिता। इसी ढंग से शिष्य को सारी सुविधाएं देना, शिष्य के लिए सब कुछ अच्छा वातावरण देना ताकि वो भक्ति कर सके, भगवान को प्राप्त कर सके, ये सब गुरु देखते हैं। और गुरु निश्चित रूप से कभी भी शिष्य को त्यागते नहीं है और शिष्य की उन्नति के लिए हमेशा सोचते रहते हैं। तो हमारी एक शिष्य की कमी होती है, आगे हम चर्चा करेंगे, कि वो गुरु से संबंध स्थापित नहीं कर पाता। क्या गुरु के प्रति जो हमारा प्रेम है वो अभिव्यक्त कैसे होगा कि केवल गुरु के पीछे पीछे हम भागते रहे, उनके साथ कुछ फोटो खिंचवा लें, जय गुरुदेव करते रहे, उनको बड़ी बड़ी माला डाल दें। गुरु के प्रति हमारा प्रेम हम व्यक्त कर सकते हैं एक आज्ञाकारी शिष्य होकर। सारे पापों से रहित जीवन, चार नियमों का सख्ती से पालन करके, जो हमने उनको वचन दिए थे दीक्षा के समय उसका सख्ती से पालन करके, और बिल्कुल अपनी इंद्रियों को और मन को संयमित करके, सेल्फ डिसिप्लिन होकर, जब तक ये नहीं होगा तो हम गुरु के एक आज्ञाकारी शिष्य नहीं बन सकते, हम गुरु के प्रिय नहीं बन सकते। इसलिए अगर इस गुरु परंपरा से हमने अपने आप को जोड़ना है तो हमें देखना पड़ेगा कि क्या हम गुरु के प्रिय बन रहे हैं, क्या हम इतने सिंसियर हैं कि जो हमें इंस्ट्रक्शंस मिलती हैं हम उसका पालन करने का सही ढंग से प्रयास कर रहे हैं, क्या हम अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रित करने का प्रयास कर रहे हैं, क्या हम आज्ञाकारी हैं, क्या हमारा जीवन पूर्ण रूप से पापों से रहित है। इन सब पे हमें विचार करना चाहिए। बिना इसके किए केवल हम कहीं बोलते हैं जी हमें तो गुरु से बहुत पर्सनल टच मिलता है, उस पर्सनल टच से दिव्य ज्ञान हृदय में प्रकाशित नहीं होगा, है ना। हमारे गुरु बहुत सेवा करते हैं, गुरु जी हमको बहुत टाइम देते हैं, और टाइम लेने से, गुरु का टाइम लेने से कोई दिव्य ज्ञान हृदय में प्रकाशित नहीं होगा। प्रभुपाद के ऐसे कई शिष्य थे जो प्रभुपाद से मिले भी नहीं, दीक्षा हो गई और अब वो प्रभुपाद जी का इतना बड़ा कार्य कर रहे हैं, और कई ने प्रभुपाद को खाली एक बार ही देखा बस। जिन्होंने देवंबत स्वामी महाराज बताते हैं कि प्रभुपाद ने मेरे लिए पूरे जीवन में केवल मेरे लिए एक शब्द बोला है, वो हम बस ऐसे, कैसे लोगों ने बोला ये है प्रभु जी बहुत पढ़े लिखे हैं, बड़ी अच्छी यूनिवर्सिटी से, अब ये अपना जीवन समर्पित करना चाहते हैं। तो प्रभुपाद ने ऐसे देखा बस इतना ही, और देखिए वो पूर्ण से समर्पित हैं और अभी तक सेवाएं किए जा रहे हैं, खूब प्रचार किए जा रहे हैं, बस वो याद है कि प्रभुपाद ने किया था। हम चाहते हैं नहीं, हम गुरु के पास चिपके रहें, बातचीत करें, गुरु के सर पे हाथ फेरें, ये करें वो करें, गले लगाएं, अपना वहां प्रसाद दें, बड़ा प्रेम है हमारा गुरु के साथ। ये करने से दिव्य ज्ञान हृदय में प्रकाशित नहीं होगा, हमें आज्ञाकारी शिष्य बनना पड़ेगा, जानना पड़ेगा जो हम पढ़ते हैं सुनते हैं बहुत ध्यानपूर्वक, क्योंकि जो गुरु से हमने ज्ञान प्राप्त किया है इसको आगे देना पड़ेगा यथा रूप। ये बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। स्वामी महाराज बताते हैं कि प्रभुपाद बता रहे हैं आदि लीला में, एन इल्यूजन इज ए मिसअंडरस्टैंडिंग विच अराइजेज फ्रॉम इनअटेंशन वाइल हियरिंग एंड चीटिंग इज अ ट्रांसमिशन ऑफ सच डिफेक्टिव नॉलेज टू अदर्स। ध्यानपूर्वक सुनिए मतलब इसका, भ्रम कैसे उत्पन्न होता है, गलत फहमी जो कि शुरुआत होती है उसकी श्रवण के समय हम ध्यानपूर्वक श्रवण नहीं करते, और ध्यानपूर्वक सुना तो है नहीं, और आगे बन गए हम प्रचारक बन गए और वही सुना दिया जो समझ में आया उल्टा सीधा, तो ये धोखा है। हम लोग कैसे सुनते हैं हम जानते हैं, है ना, सोते सोते हम सुनते हैं, सुनते सुनते हम सोते हैं, तो फिर आगे हम अमर आ गया गुरु हो तारे दे शांति गुरु भी बन जाते हैं, फिर हम बताइए क्या सुनाना है, हाँ ये तो सुना था, जो समझ में आया वो सुना दिया, ये धोखा है। क्या आगे परंपरा से हम जोड़ेंगे, क्या लोगों को जोड़ेंगे, इसलिए हमारे गुरु महाराज बताते हैं कि अगर कोई ध्यानपूर्वक जप नहीं कर रहा है तो उसका दीक्षा लेने का फायदा ही नहीं है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, अगर हम ध्यानपूर्वक जप करने का प्रयास कर नहीं रहे हैं तो हमारा गुरु परंपरा से संबंध स्थापित ही नहीं होगा, और हृदय में ज्ञान कैसे प्रकाशित होगा, हम अंधकार में ही रहेंगे, प्रत्यक्ष अनुमान प्रमाण पर ही निर्भर रहेंगे। हम लोग सुनते हैं शास्त्रों में पढ़ते हैं कि जीवन की हर पहलू में हमें भगवान का हाथ देखना चाहिए, कोई भी एक वस्तु कोई भी घटना ऐसी नहीं है जिसमें भगवान का नियंत्रण ना हो, लेकिन हमारे जीवन में कुछ बुरा घटता है हम मानते नहीं इस बात को, शब्द प्रमाण शास्त्र चक्षु से नहीं देख रहे, प्रत्यक्ष अपने अनुमान प्रमाण करें, इस व्यक्ति ये है धोखेबाज, इसने मुझे धोखा दिया, इसके कारण मेरे जीवन में कष्ट आए, तो इसका मतलब शास्त्रों की बातों में विश्वास नहीं है, क्योंकि वो ज्ञान प्रकट नहीं हुआ, क्यों, इन अटेंशन वाइल हियरिंग, ध्यानपूर्वक पढ़ा नहीं, ध्यानपूर्वक सुना नहीं, मनन नहीं किया, समझे नहीं, वैसे ही चले जा रहे हैं और टाइम निकलता जा रहा है। टाइम तो एक एस्केलेटर के समान है, पता नहीं चलेगा पीछे कर देगा आपको, हमें मालूम भी नहीं चलेगा, एस्केलेटर पे गए ना कभी, प्रयास नहीं करना पड़ता चढ़ने के लिए उतरने के लिए, अपने आप नीचे जाते और खट से साइड में, ऐसे हमारी उम्र ऐसे निकल जाएगी और हम ऐसे भ्रम में ही रहेंगे, क्यों, इन अटेंशन, हम सुनते समय ध्यानपूर्वक नहीं होते, तो फिर गुरु के साथ संबंध कैसे स्थापित होगा। जो वो बोल रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण बात है, जो ये बातें प्रभुपाद जी ने परपट्स लिखी हैं, ये बोले हैं प्रभुपाद ने, रात रात भर जाग के बोला है, और हम लोग बहुत कैजुअल होते हैं इसको पढ़ने में समझने में, अगर इसको हम ध्यानपूर्वक सुनेंगे और एज इट इज इसको रिपीट करेंगे, तभी बोला ट्रांसपेरेंट मीडियम, तो निश्चित रूप से हमारा भी शुद्धिकरण होगा और जो लोग हमसे सुनेंगे उनका भी शुद्धिकरण होगा, और तब हम सब वास्तव में प्रभुपाद के द्वारा दिव्य ज्ञान का लाभ उठा सकते हैं, वो है वास्तव में भक्ति, इसको बोलते हैं गुरु के प्रति अनुरक्त होना। लेकिन हम लोग अपने रजोगुण और तमोगुण में इतना विश्वास करते हैं और श्रवण और रीडिंग के समय अध्ययन के समय हम इतने ध्यानपूर्वक नहीं होते, तो इस बात पे हमें ध्यान देना चाहिए, तब हम इस दिव्य ज्ञान को शब्द भ्रम को समझ पाएंगे। तो अब ये ध्यान कैसे लगाया जाए, ध्यानपूर्वक श्रवण क्यों नहीं हो पाता, प्रभुपाद श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंध के तीसरे अध्याय में बताते हैं कि अगर कोई रैप्ट अटेंशन से सुने, रैप्ट अटेंशन प्रभुपाद वर्ड यूज करते हैं, बहुत ध्यानपूर्वक सुने, तो भागवतम के प्रत्येक पृष्ठ पर पन्ने पर वो भगवान श्री कृष्ण का साक्षात्कार कर सकता है। फिर बाबा क्या बताते हैं कि अटेंशन कब होगा, जब हमारा मन शुद्ध होगा, और मन कब शुद्ध होगा, जब हमारी सारी क्रियाएं शुद्ध होंगी, क्रियाएं शुद्ध कब होंगी, जब हमारा आहार निद्रा भय मैथुन शुद्ध होगा। छोटी सी बात है ये, यो पशु और मनुष्य में अंतर है, बस आहार निद्रा भय मैथुन को हम शुद्ध करें, उससे मन शुद्ध होगा, मन शुद्ध होगा तभी हम ध्यानपूर्वक सुन पाएंगे, तो ध्यानपूर्वक सुनकर हम गुरु की कृपा को प्राप्त कर सकते हैं। और आगे बहुत कुछ है बताने को, कैसे टाइम काफी हो गया, इसके बारे में और बताया गया है कि कैसे ये जो शब्द ध्वनि है ये हमारे हृदय में प्रवेश करके कैसे ज्ञान प्रकाशित करती है, ये भी बहुत बड़ा सुंदर ज्ञान है, कैसे इस ज्ञान की अलग अलग स्थिति होती है, और लेकिन वो सारा कार्य तब शुरू होगा सबसे पहले हम इसकी शरण लें। ये जो शब्द ब्रह्म है ये भी वास्तव में चेतन है, ये कोई जड़ वस्तु नहीं है। हम जो विद्यालयों में पाठशालाओं में विश्वविद्यालय में ज्ञान प्राप्त करते हैं वो जड़ ज्ञान है। उस जड़ ज्ञान के ऊपर हम लॉर्ड ओवर कर सकते हैं और उसको अपने भोग के लिए उपयोग कर सकते हैं। इसी टेंडेंसी के साथ हम शब्द ब्रह्म के पास जाते हैं, ज्ञान को स्वीकार करते हैं। ये चेतन है, सुपर कॉन्शियसनेस है, इसकी हमें पूजा करनी चाहिए। ये कृपा पर निर्भर है पूर्ण रूप से। जब किसी साइंटिस्ट को बताएंगे ये लोग उसे विश्वास ही नहीं करेंगे, क्या बेवकूफी की बात है। एक नया थ्योरी निकालो, नई फिलॉसफी निकालो, नया सिद्धांत निकालो, उसे रिसर्च करो। लेकिन एक शिष्य है वो कोई रिसर्च नहीं करता, वो इनकी शरण ग्रहण करता है। इसलिए हमारे कई मंदिरों में लाइब्रेरी है उस भक्तों के लिए। उस लाइब्रेरी के पुस्तकालय का नाम लिखा होता है शरणागति। हमें शास्त्रों की शरण ग्रहण करनी है गुरु और साधुओं के माध्यम से। इस ज्ञान को हमने इसके ऊपर अपना प्रभुत्व नहीं जमाना, इस ज्ञान का उपयोग करके हमने धन और यश नहीं कमाना। हम इस ज्ञान का उपयोग करके यश कमाने में लगाते हैं, इसका प्रभुत्व इस पर लगाते हैं, इसको कंट्रोल करना चाहते हैं, तो यह ज्ञान प्रकाशित नहीं होगा। भगवान मुंडक उपनिषद क्या कहते हैं, बहुत प्रवचन देने से कोई मुझे प्राप्त नहीं कर सकता। बड़े बड़े श्लोकों का उच्चारण करके हम ज्ञान को हृदय में प्रकाशित नहीं कर सकते, ये हृदय का मामला है। भक्ति बहुत अंतरंग है, तो इस ढंग से हम इसको समझ सकते हैं। और जो आज कल ये आधुनिक ज्ञान हम प्राप्त कर रहे हैं, ये तो वास्तव में प्रभुपाद कहते हैं बहुत ही रिस्की है, क्योंकि ये जो बुद्धि हमें दी गई है, ये बुद्धि दी गई है ये जानने के लिए कि सत्य क्या है और असत्य क्या है। और इस बुद्धि के अगर हम जान पाए कि मृत्यु के बाद क्या होता है, जैसे किसी बंदर के हाथ में अपने स्टैंडगन पकड़ा दी, मशीन गन दे दी, वो क्या करेगा, कितना रिस्की है। इसी ढंग से ये आधुनिक वैज्ञानिकों को हाथ में बुद्धि आ गई है और वो इस बुद्धि का उपयोग क्या कर रहे हैं, एटम बम बनाने में। ज्ञान का अर्थ है कि जो हमें मुक्त अवस्था में ले जाए, लेकिन जो ये अभी का अज्ञानता है, आधुनिक ज्ञान है, ये हमें मृत्यु की ओर ले जाता है, डिस्ट्रक्शन की तरफ ले जाता है। भगवान उद्धव को भागवतम के 11वें स्कंद में बताते हैं कि विद्या का अर्थ क्या है, विद्या आत्मनि विदा बाधो। जो विद्या है, जो आत्मा के अंदर जो ड्यूअलिटी है, द्वंद है, उसका नाश करती है, ये असली विद्या का अर्थ है। लेकिन जो आधुनिक ज्ञान है वो हम जानते हैं वो हमारे भ्रम को और बढ़ाता है, हमसे और पाप कराता है। सो लॉट टू से, बट आई थिंक मैं यहीं पे विराम दूंगा। और कुल मिला के आज हम इस बात को समझने का हम प्रयास करें कि जब तक हम अच्छे ढंग से शास्त्रों की शरण ग्रहण नहीं करेंगे, जब तक हम ध्यान पूर्वक गुरु परंपरा की शरण ग्रहण नहीं करेंगे, और ध्यान पूर्वक गुरु परंपरा की शरण करने का अर्थ है कि ध्यान पूर्वक उनसे सुनना, ध्यान पूर्वक अध्ययन करना, उस पर मनन करना, तब तक हमारा गुरु के साथ कोई हृदय से संबंध स्थापित नहीं होगा और तब तक कोई ज्ञान प्रकाशित नहीं होगा। और जब तक ये प्रकाशित नहीं होगा तब तक हम अनुमान प्रमाण और प्रत्यक्ष प्रमाण पर ही हमेशा निर्भर रहेंगे और उसमें हमेशा धोखा ही खाएंगे, धोखा देंगे और धोखा खाएंगे। और हमारी जो इच्छाएं हैं वो शुद्ध नहीं है, इसलिए हम भगवान से सुनना नहीं चाहते, सुनना नहीं चाहते तो हम भगवान को जान नहीं पाते। तो अपनी इच्छाओं को कैसे शुद्ध किया जाए, तो वेदों में बताया गया कि इच्छाओं को शुद्ध करने के लिए यज्ञ की व्यवस्था दी गई है। और भगवदगीता में भगवान बताते हैं सहयज्ञ प्रजाश्रिष्ट पूर्ववाच प्रजापति, भगवदगीता तीसरे अध्याय का 10वां श्लोक है कि अपनी इच्छाओं की पूर्ति हमें यज्ञ के माध्यम से करनी चाहिए, उससे इच्छाएं शुद्ध होंगी। और कलयुग में संकीर्तन यज्ञ के द्वारा हम अपने हृदय को शुद्ध कर सकते हैं, इच्छाओं को शुद्ध कर सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज के माता पिता इस बात में बहुत चिंतित रहते हैं कि हमारे बच्चे को अच्छे स्कूल में एडमिशन मिल जाए ताकि वो जड़ विद्या स्वीकार करें। जड़ विद्या बताया गया है कि व्यक्ति को गधा बना देती है, भक्तिनो ठाकुर बताते हैं। तो बच्चे को हम गधा बनाने के लिए बहुत तत्पर हैं, और इस जड़ विद्या के द्वारा भक्ति सांसव ठाकुर महाराज बताते हैं कि हम परम सत्य से बहुत दूर हो जाते हैं। लेकिन एक जो भक्त आप वैष्णव माता पिता हैं, हमारा एक कर्तव्य बनता है कि हम अपने जो बच्चे हैं उनको इस शास्त्र शब्द ब्रह्म की ओर ले जाएं। ये अति आवश्यक है। एक अलग बात है कि कब हम एक ऐसा विद्यालय खोलेंगे जहां पर बच्चों को हम अच्छी प्रॉपर शिक्षा दे पाएंगे, लेकिन कम से कम हम घर में ऐसा वातावरण रखें और उनको इस बात के लिए हमेशा उत्साहित करते रहे। अन्यथा वो व्यक्ति जितना ज्यादा ये जड़ ज्ञान प्राप्त करेगा उतना ज्यादा वो भ्रमित होता जाएगा, उतना ज्यादा वो नास्तिक बनता जाएगा। क्योंकि ये इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, औद्योगिकरण हो रहा है, इसमें मशीन्स आ रही है, मशीन में वो मैन्युफैक्चर करता है, वो सोचता है कि मैं ही उत्पादक हूं, मैं ही क्रिएटर हूं, मेरे हाथ में रिमोट कंट्रोल है। वो भगवान के अस्तित्व को भूल जाता है, उसको लगता ही नहीं कि रोजमर्रा की जिंदगी में भगवान का कुछ महत्व है। और ज्यादा से ज्यादा कुछ समझ रहे कुछ शक्ति है, एक भगवान एक व्यक्ति है, ये समझ पाना असंभव हो जाएगा। इसलिए बचपन से ही कौमारा माचरत प्राग्यो धर्मन भगवतान ही, बचपन से ही हमें ये ज्ञान देना चाहिए। हमसे तो गलती होगी, हम बचपन से प्राप्त नहीं कर पाए, लेकिन आगे वाली जनरेशन को हमें ज्ञान दें और खुद को हम गुरु परंपरा से जोड़ने का प्रयास करें और इस परंपरा को हम आगे बढ़ाएं, ये हमारा कर्तव्य बनता है। ऐसे ही हम अपना जीवन प्रभाव जाते हैं ये बिना जाने कि हमारा अगला जीवन क्या होगा। अगर शरीर त्याग दिया तो पशु के समान है, पशु को भी नहीं पता उसका अगला जीवन क्या है, वो सोचता भी नहीं अगले जीवन के बारे में। अगर हम भी ऐसे अपना जीवन बिता देंगे तो फिर क्या है। आप देखिए ना आधुनिक वैज्ञानिकों का, वो मानते ही नहीं कि अगला जीवन है, कितना बड़ा भ्रम है। शरीर के समाप्त होते सब कुछ समाप्त हो गया, कितना बड़ा भ्रम है, और भ्रम गहरा होता जाता है। इसलिए प्रभुपाद जी की कृपा से हम इस ज्ञान को प्राप्त कर पा रहे हैं, तो उसको पूर्ण रूप से प्राप्त करें अच्छे तरीके से और उसको अच्छे तरीके से इसका प्रचार करें। हरे कृष्ण। किसी वक्त कोई प्रश्न है? हाँ।
हरे कृष्ण, धन्यवाद प्रणाम जी। रोजी आपने ये बताया था कि अगर दीक्षा ले लिया ध्यान पूर्वक जप नहीं किया तो कोई विशेष लाभ नहीं है। आपने अभी बताया था कि अगर दीक्षा ले ली है प्रमाणिक गुरु से और ध्यान पूर्वक जप नहीं किया तो कोई विशेष लाभ नहीं है। फिर आपने सॉल्यूशन बताया था कि हमें आहार निद्रा भय मैथुन को शुद्ध करना है, तो इन चारों को शुद्ध करने का क्या हम लोग इसका क्या अर्थ समझ सकते हैं, इनको कैसे शुद्ध किया जाए?
आहार निद्रा भय मैथुन को शुद्ध करने का अर्थ है कि जैसे आहार को कैसे शुद्ध कर सकते हैं, केवल प्रसाद में। अब उसमें भी कई कैटेगरीज है ना, हम जानते हैं कि प्रसाद कुछ भी करके कई लोग विष्णु 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 करके है ना, मतलब प्रसाद हो गया तो भक्तों के द्वारा बनाया हुआ, भक्तों के द्वारा सर्व किया गया, अच्छी चेतना में पाना उसको, वो है आहार को शुद्ध करना है ना। निद्रा को शुद्ध करना कैसे है? कैसे निद्रा को शुद्ध करेंगे? कौन सी स्लीपिंग पिल खाएंगे? सोने से पहले प्रभुपाद कहते हैं कृष्णा बुक पढ़ें और ज्यादा ना सोएं, अनटाइमली ना सोएं, है ना। कुछ टाइम पास नहीं हो रहा चलो सो जाते हैं, आज छुट्टी चलो सो जाते हैं, नहीं अनटाइमली ना सोएं, केवल लिमिट समय के लिए सोएं, ज्यादा से ज्यादा 6 घंटे सोएं। और सोना भी इसलिए है कि शरीर को स्वस्थ करके मैं खड़ा होकर तुरंत सेवा में लगूं। प्रभुपाद उसी नेक्स्ट में बता रहे हैं स्लीपिंग का मतलब है कि शरीर बहुत थक गया है, अब ये सेवा में नहीं जुड़ सकता, तब सोना है। थक गया है इसका मतलब सोने को शुद्ध करने के लिए दिन भर मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि हम दिन भर मेहनत नहीं करते हैं तो फिर नींद नहीं आती, जब नींद आती है तो रात के 2 बज चुके होते हैं, जब सुबह उठते हैं फिर सुबह के 9 बज चुके होते हैं, फिर हम दिन भर कोई मेहनत नहीं करेंगे। तो इससे नहीं, अगर सोने को शुद्ध करना है तो दिन में खूब सेवा करनी पड़ेगी। फिर जब सोने का अर्थ है कि शरीर थक गया है, अभी सेवा अभी सही ढंग से नहीं कर पाएगा, तो उसको रेस्ट चाहिए, रेस्ट खड़ा होकर फिर से हम सेवा करें। गोस्वामी जब 1.5 घंटा भी रेस्ट करते थे तो पछताते थे, और हम लोग थोड़ी नींद कम होती थी हम रोते हैं। तो आहार निद्रा मैथुन को शुद्ध कर सकते हैं गर्भाधान संस्कार करके, केवल संतान की उत्पत्ति के लिए हम मैथुन करें। और भय, किसका भय होना चाहिए हमें? हाँ, भक्तों का संग ना छूट जाए, ये कृपा हाथ से ना निकल जाए, जब ठीक नहीं हो रहा इसका भय होना चाहिए, शास्त्रों का अध्ययन नहीं हो रहा, गलतियां हो रही, भक्तों का संग ना छूट जाए, ये भय होना चाहिए। तो इस ढंग से हम इसको आप इसको शुद्ध कर सकते हैं, ठीक है।
हरे कृष्ण भाई जी, आपने बताया कि जो आध्यात्मिक जगत है उसकी रचना आध्यात्मिक शिवध्वनि से होती है, आपने बताया आध्यात्मिक जगत है उसकी रचना आध्यात्मिक शिवध्वनि से होती है, जो भौतिक है उसके भौतिक शब्द होने से, भौतिक शब्द होने से भौतिक जगत की रचना कैसे होती है?
जब हम भागवतों में पढ़ते हैं क्रिएशन कैसे होती है, तो उसे बताया गया है कि कैसे एक एक एलिमेंट आता है क्रिएशन का। पहले सूक्ष्म आता है, फिर उससे सूक्ष्म के बाद उससे ग्रॉस होता है। उसमें सबसे पहला जो एलिमेंट होता है वो शब्द है, साउंड, और उसके बाद फिर दूसरे एलिमेंट्स आते हैं, शब्द, स्पर्श, गंध, रस, इस बात में आते हैं। तो इसके द्वारा फिर सृष्टि की रचना शुरू होती है, ठीक है।
लेकिन जो शब्द जो है वो तो कृष्ण से निकल रहा है, कृष्ण तो आध्यात्मिक है, फिर वो भौतिक कैसे हो जाता है?
हाँ, लेकिन ये एक सुविधा दी गई है बद्ध जीवों को अपने आप को शुद्ध करने के लिए, तभी सृष्टि की रचना तो करनी है, तभी भौतिक की रचना की गई है।
थैंक यू वेरी मच क्लास जी। इट इज ऑल्सो सेड कि गुरु से बाय द मर्सी ऑफ गुरु वी गेट नॉलेज, एंड इट इज बताया जाता है कि जो हमारा ज्ञान है वो सुप्त अवस्था में, द मोर यू प्यूरिफाई आवर सेल्फ बाय चैंटिंग एंड हियरिंग इट इज रिवील्ड। तो ये कैसे समझे कि द गुरु से आता है, या फिर हमारे हम लोग जब सेवा करते हैं वी गेट प्यूरिफाइड, उससे आता है? और
आप कह रहे हैं कि ज्ञान तो हमारे हृदय में है, सुसुप्त अवस्था में है, मैं मेहनत करता हूं तो ज्ञान जागृत हो जाता है।
मोर वी चैंट एंड हियर,
मैं परिश्रम करता हूं तो ज्ञान जागृत हो जाता है। तो गुरु का रोल इसमें क्या देखें?
मतलब इंस्ट्रक्शन दिया है, बट हाउ इज ही रिवीलिंग?
हाउ
रिवील कैसे कर रहे हैं?
हाँ, अच्छा प्रश्न है। जैसे हम इंस्ट्रक्शन मिली और हम उनकी आज्ञा का पालन करते हैं, सेवा करते हैं पाप रहित होकर सारी आज्ञाओं का, उससे हम गुरु की कृपा को आकर्षित करते हैं। वास्तव में हम लोग इतने अशुद्ध अवस्था में हैं, जब तक हमें कोई शुद्ध जीवात्मा, शुद्ध ज्ञान हमें मदद नहीं करेगा, हम इसे बाहर नहीं निकल पाएंगे। तो बताते हैं प्रभुपाद, जब तक कोई तीन गुणों से निकलने के लिए छटपटा नहीं रहा, कोई मदद नहीं दी जाएगी। कोई तीन गुणों में पड़ा हुआ है आराम से, ऐसे कोई कैदी है पड़ा हुआ है, ऐसे निकलने का प्रयास ही नहीं कर रहा, आचरण भी खराब है, तो बाहर थोड़ी निकलेगा। तो कोई तीन गुणों से निकलने का प्रयास नहीं कर रहा तो उसकी कोई मदद भी नहीं करेगा। तो अगर हम आज्ञा का सही ढंग से पालन कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, इससे हम गुरु की कृपा को आकर्षित करते हैं। गुरु की कृपा के कारण हम कृष्ण के प्रिय बनते हैं, गुरु की कृपा से हम कृष्ण के प्रिय बनते हैं, क्योंकि गुरु के कृपा प्राप्त करना, गुरु की आज्ञा का पालन करना, इसका अर्थ है कि जो हमारे कृष्ण हैं उनकी आज्ञा का पालन करना, क्योंकि जो गुरु हैं वो कृष्ण के हृदय में रहते हैं, है ना। डिवोटी इज द सुपर सोल ऑफ द सुपर सोल, परमात्मा हम सबके हृदय में रहते हैं और परमात्मा के हृदय में भक्त रहते हैं। उन भक्त की जगह कृपा को हम आकर्षित करते हैं तो हम कृष्ण के जो हृदय है, क्योंकि कृष्ण के हृदय में गुरु हैं, उनकी कृपा को आकर्षित कर लिया, कृष्ण के हृदय के हम प्रिय बन, कृष्ण के हृदय के समीप जाते हैं, तो उससे वो ज्ञान हमारे अंदर स्थानांतरित होता है, दिव्य ज्ञान। तो हमें लगता है कि हम अपने परिश्रम कर रहे हैं, नहीं, वास्तव में एक कृपा से है। केवल अपनी अच्छी साधना करने से गारंटी नहीं है कि दिव्य ज्ञान प्रकाशित होगा। हो सकते हैं हम पूरा जीवन मंगल आरती आते रहें, पूरा जीवन सोलह माला दफ करते रहें, खूब सब कुछ करते रहें, लेकिन हम अज्ञानता में ही रहें, ताकि वो दिव्य ज्ञान हृदय में प्रकाशित ना हो, क्योंकि हम कृपा को आकर्षित नहीं कर पाए। तो निर्भर करता है हमारे एटीट्यूड पर, ठीक है ना। ये मैकेनिकल नहीं है, ठीक है।
प्रवचन में जैसे बताया कि ज्ञान के तीन स्रोत हैं, ज्ञान के तीन स्रोत हैं, जो प्रमाणों के बारे में हमने बात की, एविडेंसेस ऑफ नॉलेज, अनुमान है, शब्द है, प्रत्यक्ष है। तो हम यूजुअली जब हम शास्त्र पढ़ते हैं ज्यादातर केस में, तो कंडीशन लिविंग एंटिटी को समझाने के लिए लाइक प्रॉपर के जितने भी ग्रंथ है उसमें वी सी सो मेनी एनालॉजीज एग्जाम्पल्स, मोस्टली एनालॉजीज ज्यादा जो होती, तो ऑल दिस एनालॉजीज मोर और लेस आर बेस्ड ऑन अनुमान एंड प्रत्यक्ष ओनली। सो हाउ टू सी दिस, बिकॉज
एक्चुअली मैं इस बात को टच करना चाहता था, ये अपने आप पूरा सब्जेक्ट है, इनका बड़ा अच्छा प्रश्न है कि बद्ध जीव आत्मा है और उसको आप शब्द भ्रम दे रहे हैं तो वो कैसे समझेगा इसको, क्योंकि हमारा अनुभव है हम प्रत्यक्ष ना चमत्कार को नमस्कार करते हैं, कुछ करके दिखाओ तब मानेंगे आप गुरु हैं,
एक साधारण व्यक्ति जिसके दो हाथ हैं, दो पांव हैं, दो आंखें हैं, चश्मा लगाया हुआ है उसने, बोला आप गुरु हैं, बोले मैं भी ऐसे हूं, आप भी ऐसे हैं, आप कुछ लोग बोलते हैं, मैं भी कुछ लोग बोलते हैं, गुरु कैसे मानूं, कुछ चमत्कार दिखाइए, तो कैसे उसका विश्वास जीता जाए, है ना। तो समय तो बताते हैं थोड़ा सा इसमें से, इसमें उस ज्ञान के प्रकाशित होने की कई स्थितियां बताई गई हैं, जैसे कि चैतन्य महाप्रभु ही बताते हैं, जीवे साक्षात नहीं ताते गुरु चेते रूपे, शिक्षा गुरु हरे कृष्ण महांत स्वरूपे, आदि लीला एक भाग में। क्योंकि एक बद्ध जीव परमात्मा की उपस्थिति का अनुभव नहीं कर सकता, तो वो उसके सामने एक शुद्ध जीव, एक महात्मा के रूप में प्रकट होते हैं, और ये जो महात्मा है ये कृष्ण से अभिन्न है। तो जीवे साक्षात, जो बद्ध जीव है वो साक्षात देखना चाहता है, उसको कुछ प्रत्यक्ष दिखाना पड़ेगा। तो जो आचार्य हैं वो अपने आचरण के द्वारा पहले उसको प्रभावित करते हैं। तो किसी भी बद्ध जीव को अगर शब्द ब्रह्म के प्रति आकर्षित करना है, सबसे पहले उसको प्रत्यक्ष प्रमाण, और प्रत्यक्ष प्रमाण है हमारा आचरण। कोई व्यक्ति आएगा, हम उसको शब्द ब्रह्म सीधा नहीं थोप सकते, ओम श्रद्धा अनामृति ये है वो है, प्रत्यक्ष प्रमाण बेकार है, अनुमान प्रमाण बेकार है, शास्त्रों पे पढ़ो, भगवद्गीता के श्लोक सुना के, उससे कोई प्रभावित नहीं पड़ेगा, वो फिलॉसफी नहीं समझेगा, वो सबसे पहले प्रत्यक्ष देखेगा। इस मंदिर में आते हैं, इस गेस्ट को कैसे रिसीव किया जाता है, क्या सिस्टम है, कैसे प्रसाद दिया जाता है, कैसे लोग हंसकर बात करते हैं, गुस्से में बात करते हैं, प्रत्यक्ष आचरण। तो सबसे पहले जो ज्ञान बद्ध जी प्राप्त करेगा, प्रत्यक्ष प्रमाण से ही प्राप्त करेगा। प्रत्यक्ष के बाद वो अपनी आंखों से जो देखेगा, सुनेगा, जो उसको अच्छा लगेगा, प्रसाद बढ़िया है, हाँ प्रत्यक्ष अच्छा है, ये जगह अच्छी है, सब कुछ अच्छा, और प्रसाद मिला ही ना उसको, तो उसको वो सब कुछ अच्छा पा लिया, बाहर उसके जूते चोरी हो गए, ऐसा होता है ना, गाड़ी आया, गाड़ी पे स्क्रैच लगा दिया किसी ने, पंचर कर दिया, सारा बोले खराब है इस जगह। तो सबसे पहले हमारा आचरण परफेक्ट होना चाहिए, तभी वो उसके प्रति आकर्षित होगा, शब्द ब्रह्म के प्रति। फिर है प्रत्यक्ष के बाद परोक्ष, जब उसको लगता है जगह ठीक है, यहां पे मैं ज्ञान प्राप्त कर सकता हूं, फिर परोक्ष। परोक्ष का अर्थ है ज्ञान प्राप्त करना दूसरे के इंद्रियों के द्वारा। प्रपा उदाहरण देते हैं एक लेक्चर में कि हमें यहां सूर्य दिखाई नहीं दे रहा, यहां रात्रि है, मैंने कनाडा में फोन किया, हाँ भाई क्या टाइम हो रहा है, बोले रात दिन के 12 बज रहे हैं, सूर्य दिखाई दे रहा है, हाँ सूर्य दिखाई दे रहा है, ठीक है मैं मान गया, मुझे दिखाई नहीं दे रहा, मेरे मित्र को दिखाई दे रहा है, उसके इंद्रियों के द्वारा मैंने ज्ञान प्राप्त किया। प्रभुपाद जी ने लिखा है कुछ पुस्तकों में कि हाँ मनुष्य चांद पे नहीं जा सकता, तो मनुष्य चांद पे नहीं जा सकता, दूसरों के इंद्रियों के द्वारा, अपने आचार्यों के इंद्रियों के द्वारा ज्ञान प्राप्त करना परोक्ष। तीसरा है अपरोक्ष। अपरोक्ष का अर्थ है कि अब मैं कुछ लॉजिक का, तर्क का उपयोग करने लगा हूं, इन वैदिक नॉलेज में जो शास्त्र पढ़ता हूं उसको तर्क से समझने का प्रयास करता हूं, अलग अलग दृष्टिकोण से देखता हूं, और फिर डायरेक्टली उसका अनुभव करता हूं, तो यह हुआ डायरेक्ट नॉलेज है। इसके बाद चौथी चीज होती है अधोक्षज। अधोक्षज का अर्थ है कि जो मैं अपने इंद्रियों के द्वारा ज्ञान प्राप्त करता हूं उसको मैं नीचे धकेल देता हूं कि ज्ञान पूर्ण नहीं है, इसको बोलते हैं अधोक्षज। इससे ज्ञान रिवील होता है, प्रकट होता है। और अंत में है अप्राकृत। अप्राकृत का अर्थ है कि दिव्य प्रत्यक्ष, अब मैं भगवान की लीलाओं को देख पाऊंगा प्रत्यक्ष रूप से। चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी में थे तो उन्होंने क्या दिखा देते कि वृक्ष, अशोक वृक्ष के नीचे भगवान त्रिभंग श्याम सुंदर कृष्ण खड़े हैं, और देखते ही उनके पीछे भागते और मूर्छित हो जाते हैं, दिखाई दी, ऐसा नहीं कि हेलुसिनेशन, भ्रम हो रहा है, अप्राकृत, उनको दिव्य प्रत्यक्ष दिखाई दे रहे हैं। तो इस ढंग से एक बद्ध जीव इन पांच ज्ञान की अवस्थाओं को प्राप्त करता है। तो प्रभुपाद बताते हैं कि अधोक्षज और अप्रकृत ये वास्तव में कृष्णा कॉन्शियसनेस है। और जो पहले तीन विधियां हैं कौन कौन सी थी, प्रत्यक्ष, परोक्ष, अपरोक्ष, ये वास्तव में असेंडिंग प्रोसेस है, और जो चौथा और पांचवा ये डिसेंडिंग प्रोसेस, ये भक्ति है। और एक प्रभु बताते हैं कि ये वैधि भक्ति और राग भक्ति। अप्रकृत मतलब राग भक्ति में व्यक्ति स्थित है, और अधोक्षज मतलब हम सब करते हैं नियमों का छरण से पालन करते हैं, शास्त्रों के ध्यान का अध्ययन करते हैं, तो ज्ञान रिवील होते हैं। तो इस ढंग से ये जो वैदिक ज्ञान, जो शब्द ब्रह्म है, जो हमें इस अवस्था में है पूर्ण रूप से अज्ञानता में लिप्त हैं कि हमें प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा ही ज्ञान, हम प्रमाण को स्वीकार करते हैं, तो धीरे धीरे हम ये दिव्य स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये बहुत ही, ये असल में असली साइंस है। लोग बोलते हैं कि ये आपका बिलीफ है, वास्तव में वो बिलीफ है कि बंदर से आदमी निकला है, وہ سائنس نہیں ہے, وہ آپ کا ماننا ہے, یہ واسطہ میں اصلی سائنس ہے. ٹھیک ہے نا؟ ہرے کرشن. انت کوٹی ویشنو بند کی گرنتھ راشی مد بھاگوتم کی جگت گرو شیل پروپات کی یدائی گور پریمانندے.